بی بی سی انڈیا بول، تاریخ 31 مارچ، دن شنیوار، میں ہوں سندیپ سونی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی سی بی ایس ای کا 10ویں اور 12ویں کا ایک ایک پیپر لیک ہونے کی وجہ سے بچوں کو یہ پیپر اب دوبارہ دینے ہوں گے، لیکن پریکشا کی گوپنیتا میں ڈھلائی کیوں برتی گئی؟ کیوں لاکھوں بچوں کے بھوشیہ کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا؟ کیا بھارت میں شکشا کے پرتی گمبھیرتا میں کمی ہے؟ یہی ہے بی بی سی انڈیا بول میں آج چرچا کا وشے۔ آپ بھی رکھیں اپنی بات، کارکرم میں شامل ہونے کے لیے مفت فون کریں 1811-7000 اور 1811-7001 پر۔ چرچا کے لیے کارکرم میں شامل ہوں گے جانے مانے شکشاوید انل ست گوپال، لیکن تھوڑا ٹھہریں گے اور سنیں گے پہلے وشو سماچار۔
بی بی سی سماچار آدرش راٹھور سے۔ ایس ایس سی پیپر میں ہونے والی کتھت دھاندلی کے ورودھ میں آج سینکڑوں چھاتروں نے دلی کے سنسد مارگ پر پردرشن کیا۔ چھاتروں نے پہلے سنسد مارگ پولیس تھانے کے سامنے ورودھ پردرشن کیا اور پھر کناٹ پلیس سرکل پر ایک ورودھ مارچ بھی نکالا۔ چھاتروں کا کہنا ہے کہ ایس ایس سی کی حال ہی میں آیوجت سبھی پریکشاؤں کی طے سمے میں سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے۔ چھاتروں کی یہ بھی مانگ ہے کہ جانچ پوری ہونے تک ایس ایس سی کسی بھی پریکشا کا آیوجن نہ کرے۔ اتر پردیش کے الہ آباد اور سدھارتھ نگر ضلعوں میں ڈاکٹر بھیم راؤ رام جی امبیڈکر کی پرتیما توڑے جانے اور اس وجہ سے لوگوں کے آکروشت ہونے کی خبر ہے۔ پوری جانکاری دے رہے ہیں سمیراتمج مشر۔
الہ آباد کے جھونسی علاقے میں شکروار کی رات کچھ لوگوں نے ایک پارک میں لگی بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی پرتیما کا سر توڑ دیا۔ سوشل میڈیا میں کھنڈت پرتیما کے وائرل ہونے کے بعد بڑی سنکھیا میں لوگوں نے وہاں پہنچ کر نعرے بازی شروع کر دی۔ کھنڈت مورتی کے پاس بہوجن سماج پارٹی کے کئی نیتاؤں نے بھی جا کر اپنا ورودھ درج کرایا۔ وہیں سدھارتھ نگر ضلع کے ڈومریا گنج تھانہ کھیتر کے گوہنیا راج گاؤں میں کچھ لوگوں نے امبیڈکر کی مورتی کا ایک ہاتھ توڑ دیا۔ یہ مورتی گاؤں کے لوگوں دوارا بنائے گئے ایک بودھ وہار میں استھاپت ہے۔ دونوں ہی گھٹنائیں شکروار رات کو ہوئی ہیں۔ دوشیوں پر کارروائی اور نئی مورتی لگانے کے پرشاسن کے آشواسن کے بعد حالات پر تتکال نینترن کر لیا گیا، لیکن لوگوں میں آکروش بنا ہوا ہے۔ پولیس نے اجنات لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔
بھارت میں نرواسن میں رہ رہا تبتی سمودائے آج چینی شاسن کے خلاف ودروہ کی شروعات کی 60ویں ورشگانٹھ منا رہا ہے۔ ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں ایک وشیش کارکرم کا آیوجن کیا گیا، جس میں دلائی لاما نے شرن دینے کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت سرکار نے اس کارکرم کا آیوجن دلی میں کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ادھیکاریوں کا کہنا تھا کہ یہ بھارت کے چین کے ساتھ رشتوں کے لیے سنویدنشیل سمے ہے۔ پشچم بنگال کے پشچم بردھمان ضلع کے رانی گنج میں زندگی اب پٹری پر لوٹ رہی ہے۔ 6 دن پہلے یہاں ہوئی سامپردائک ہنسا میں 2 لوگوں کی جان گئی تھی اور سینکڑوں دکانوں میں آگ لگا دی گئی تھی۔ کیسے حالات ہیں اب وہاں، بتا رہے ہیں دل نواز پاشا۔
آج میں نے اس علاقے کا دورہ کیا جو ہنسا سے سب سے زیادہ پربھاوت تھا۔ وہاں پر لوگ اپنی جلی ہوئی دکانوں سے سامان نکال رہے تھے، کچھ دکانوں میں مرمت کا کام چل رہا تھا، لیکن یہ سخت بات تھی کہ ہندو اور مسلم وہاں پر ایک دوسرے کی مل کے مدد کر رہے تھے اور پولیس پرشاسن کی لاپرواہی کی سبھی لوگ بات کر رہے تھے۔ پشچم بنگال کے راجپال نے آج رانی گنج کا دورہ کیا، جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں نشچت طور پر وہ ممتا بنرجی سے بات تو کریں گے، لیکن کیا یہ وہ ابھی سارجنک کریں گے؟ عام لوگ جن سے میں بات کر رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ ویاپارک گھاٹا تو سمے کے ساتھ اس کی بھرپائی ہو جائے گی، لیکن جو فاصلے دلوں میں آئے ہیں ان کو پاٹنے میں شاید لمبا وقت لگے۔
آپ سن رہے ہیں بی بی سی سماچار۔ پورو روسی جاسوس اور اس کی بیٹی پر زہر سے ہوئے حملے کے بعد گہراتے وواد کے بیچ روس نے بریٹین سے اپنے ڈپلومیٹس کی سنکھیا کم کرنے کے لیے کہا ہے۔ بریٹین نے نرو ایجنٹ سے ہوئے اس حملے کا آروپ روس پر لگایا ہے، جبکہ روس اس کا کھنڈن کرتا ہے۔ دونوں پکشوں نے 23 ڈپلومیٹ پہلے ہی نکال دیے ہیں، مگر اب ماسکو اس بات کو لے کر زور دے رہا ہے کہ سبھی دیشوں کے دوتاواسوں میں کرمچاریوں کی سنکھیا سمان ہونی چاہیے۔ اس بیچ روس نے مانگ کی ہے کہ لندن میں اس کے اسٹاف کو پورو روسی ڈبل ایجنٹ کی بیٹی یولیا سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ غزہ میں سیما پر اسرائیلی سینکوں سے ہوئی جھڑپوں میں مارے گئے لوگوں کے جنازے میں ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی۔ شکروار کو کم سے کم 16 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ فلسطین کا کہنا ہے کہ لوگ شرنارتھیوں کو ان کے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دیے جانے کی مانگ کر رہے تھے، جو کہ اب اسرائیل میں ہیں، لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس پردرشن کے پیچھے حماس کا ہاتھ تھا۔ نوبیل پرسکار حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی نے پاکستان کی سوات گھاٹی استھت اپنے گھر پر آج 2 گھنٹے بتائے۔ 6 سال پہلے اسلامی چرم پنتھیوں دوارا گولی مارے جانے کے بعد وہ پہلی بار یہاں لوٹی تھیں۔ بی بی سی سماچار۔
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बताते हैं 1811-7000 और 1811-7001। इंडिया बोल में आज हम चर्चा कर रहे हैं सीबीएसई के पेपर लीक मामले पर। इससे पहले कि हम श्रोताओं से बात करें, भोपाल से जाने माने शिक्षाविद अनिल सतगोपाल टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अनिल सतगोपाल जी, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको, ये जो सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है, सिर्फ एक घटना के तौर पर देखा जाए, सिर्फ एक लापरवाही के तौर पर देखा जाए, या इसकी जड़ें कहीं और अधिक गहरी हैं? अनिल सतगोपाल, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल
जी। हम यही सवाल आपसे शुरू कर रहे थे कि ये जो सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है, क्या इसे सिर्फ एक घटना के तौर पर, एक लापरवाही के तौर पर देखा जाए, या इसकी जड़ें कहीं अधिक गहरी लगती हैं आपको?
नहीं, बहुत गहरी हैं। ये तो व्यापम का छोटा मॉडल है। व्यापम बड़ा मॉडल था, उसका छोटा मॉडल सीबीएसई का पेपर लीक है, तो हम उसी तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए, एक बड़ा चोर दरवाजा सरकार ने खड़ा कर रखा है सीबीएसई में पेपर लीक करवाने का। उस चोर दरवाजे का नाम है कोचिंग क्लास, कोचिंग का बिजनेस, जो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर खड़ा किया है। और वो कोचिंग का, जब इसलिए अभी आपने देखा ना, अभी आज की खबर है शायद, कि झारखंड में जो लोग पकड़े गए वो कोचिंग का बिजनेस करते थे, वो लोग पकड़े गए ना इसके लीक पे, उनकी मदद जो कर रहे थे दिल्ली से वो भी कोचिंग बिजनेस के थे। तो कोचिंग का जो बिजनेस है वो एक चोर दरवाजा है जो सरकार चलाती है, खुद चलाती है, और उसके जरिए ये घुसते हैं पूरे शिक्षा के सिस्टम में, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा का खुद बाजार सीबीएसई ने खड़ा किया हुआ है, भारी बाजार है, यूनिफॉर्म बेचने का, किताबें बेचने का, तरह तरह से पैसा निकाल लेने का माँ बाप की जेब में से, वो बड़ा बाजार है इसका। इसी बाजार को चमकदार रखने के लिए वो 11वीं 12वीं में, 9वीं में भी और 11वीं में भी एक प्री बोर्ड टेस्ट लेते हैं, ताकि केवल वही बच्चे परीक्षा दे पाए जो अच्छा रिजल्ट आएंगे, ताकि एडवर्टाइजमेंट कर सके, इतने बच्चे हमारे स्कूल से निकले, इतने परसेंटेज लिए, जैसे दुकानदार एडवर्टाइजमेंट करते हैं।
शिक्षाविद अनिल सतगोपाल,
बड़ा बाजार है जिसमें चोर दरवाजा है।
जी जी, शिक्षाविद
अनिल सतगोपाल, बड़ी मजबूरी है वो बेरोजगारी।
जी, हमारे साथ
शिक्षित बेरोजगारी भारी बड़ी बीमारी है, जो इस सारे चोर दरवाजे और बाजार के चारों ओर फैली हुई।
शिक्षाविद अनिल सतगोपाल, अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहेंगे। फिलहाल बीबीसी इंडिया बोल में श्रोताओं को शामिल कर रहे हैं जी। पहले कॉलर कौन है आज?
गुड इवनिंग, आई एम रोशनी सियाल फ्रॉम नोएडा ऑफ क्लास 12।
रोशनी, आपने भी इसी साल 12th का एग्जाम दिया था जिसका पर्चा लीक हुआ?
यस सर।
ये बहुत पूछने वाली बात नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, जब पहली बार आपको पता चला कि आप जो पेपर देकर आई हैं, जिसके आपने नंबर भी जोड़े होंगे और आगे की कुछ प्लानिंग कर रही होंगी, और तभी आपको पता चला कि वो पर्चा लीक हो गया, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी, कैसा लगा आपको उस समय?
सर, ये हमारे लिए एक शॉक था, जब हमने सुना कि हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर री एग्जाम हो रहा है, दोबारा हो रहा है, उन बच्चों के लिए जिन्हें बहुत मेहनत करी थी, जो रात रात पढ़ते थे, उन लोगों के लिए एक हार्ट ब्रोकन न्यूज थी। और हमारा जो करियर, जो हमने सोचा था आगे का, उस पर हमारा, जैसे कहते हैं, एक तरह का पानी फिर गया, हमारे सपनों में। और बाकी हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम आने वाले थे, हमें उनके लिए प्रिपेयर करनी थी, बट अब बोर्ड के एग्जाम हमारे दोबारा हो रहे हैं, हम उसी पे ध्यान दे रहे हैं, आगे उस चीजों का ध्यान नहीं दे रहे। बाकी जो हमें, जो जिन बच्चों ने ये सब किया था, लीक करे थे पेपर, उन वो तो कुछ नहीं, उनका तो सही है, दोबारा हो जाएगा, बट जिन लोग, जिन्होंने मेहनत करी थी रात रात भर, उनको दोबारा इन चीजों में सफर करना पड़ रहा है, और ये बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है हमारे पे कि हम दोबारा एग्जाम देंगे। जो हमारे, मतलब जो बच्चे ने अच्छा करा था, उसका क्या, अब दोबारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, और बाद में वो क्या पता डिप्रेशन में चल जाए इस वजह से। और ये पेरेंट्स के लिए भी दोबारा वही स्ट्रेस, उन्हीं दौड़ भाग से पेरेंट्स को भी निकलना पड़ेगा, सुबह सुबह उठ के 4 बजे बच्चों के साथ वही मेहनत करनी पड़ेगी, और दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
नोएडा से रोशनी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुई। रोशनी के बाद अगले श्रोता हमसे कौन जुड़ गए हैं?
मैं मोहम्मद शफी जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ जी।
जी रखें अपनी बात।
सर बात ये है कि ये जो छात्रों का मसला है ये एक चोर बाजारी है। इस चोर बाजारी का जो है ये बच्चों पर बहुत बड़ा असर डाल रहे हैं और ये जो गवर्नमेंट है ये टोटल हर माज में फेल हो रही है। तो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, बच्चों का तो सत्यानाश इन्होंने कर दिया।
ये लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। मोहम्मद शफी थे जम्मू कश्मीर से, यदि मैंने ठीक से सुना ये वही बात कह रहे थे जो शिक्षाविद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं अनिल सतगोपाल कह रहे थे। उनके पास हम लौटेंगे इस समय। और कौन श्रोता हमसे जुड़ गए हैं पहले उनसे बात करेंगे। जी
हेलो।
जी कौन बोल रहे हैं बताएं।
जी शैली सोनी बोल रही हूँ। देखिए मुझे लगता है कि ये जो पेपर लीक का मामला है, इस समय बच्चे एग्जाम देने के बाद थोड़ा रिलैक्स करके वो अपने वापस कॉलेज एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगते हैं और उस समय उन्हें ये खबर मिलती है कि पेपर लीक हुआ है। ये एक तरीके से उनके लिए बुरे सपने की तरह होता है। वो पूरे साल लगे होते हैं, मेहनत करते हैं ताकि उनके अच्छे परसेंट बने और पेपर लीक होता है। जिन बच्चों के पास पहले से ही पेपर पहुंच जाते हैं उनके मार्क्स पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। वो साल भर अपने जी जान से मेहनत करते हैं कि उनके परसेंट अच्छे आए। इसका बच्चों की मानसिकता पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता होगा। वो सोचते होंगे कि हम पूरे साल मेहनत करते हैं और वहीं कुछ बच्चों को यदि पेपर पहले ही मिल जाते हैं तो वो उनसे ज्यादा मार्क्स भी ला सकते हैं। और जब ये आया है कि अब अप्रैल में एग्जाम होना है, इस समय बच्चे अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे होते हैं, उन्हें अपने आगे की लाइफ का सोचना होता है, उन्हें पेपर देना होता है, इस समय ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक डिस्टर्बेंस होगा और उनमें तनाव भी होगा इसको लेकर।
अच्छा ये श्रोता तनाव की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो बच्चों पर तनाव महसूस इस समय हो रहा होगा। अनिल सतगोपाल जी कार्यक्रम में आपको दोबारा शामिल कर रहे हैं। बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने से एक पाठक एक श्रोता की टिप्पणी के जरिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। जुनैद अली लिखते हैं कि बात सिर्फ पेपर लीक होने तक सीमित नहीं है बल्कि ये उन एजेंसियों की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के आयोजक हैं। जब एक पेपर नहीं संभाल सकते तो इस बात की क्या गारंटी है कि इनके द्वारा जो बाकी परिणाम घोषित किए गए हैं उनमें किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई या उनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई। बड़ा सवाल उठाते हैं ये, क्या कहेंगे आप इस पर?
ये तो बिल्कुल सही बोला है इस श्रोता ने, क्योंकि मैंने बात शुरू की थी कहके कि सीबीएसई का लीक व्यापम का छोटा मॉडल है और जिन कारणों से व्यापम जैसा कांड हुआ भारत की शिक्षा में, ये ठीक वही कारण सीबीएसई के लीक के लिए जिम्मेदार है। शिक्षा, ये मैंने कहा सीबीएसई सिस्टम खुद शिक्षा का बाजार बन चुका है और वो सही बोल रहा है श्रोता, वो सही बोल रहे हैं। तब उसके हर कर्मचारी एक बाजार का हिस्सा है ना, वो शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। हर एक कर्मचारी चाहे छोटा हो चाहे बड़े पद पर हो, सब एक बाजार को चला रहे हैं और बाजार में तो हर चीज मान्य है ना, हर तरीके की गड़बड़ लूट चोरी सब मान्य है बाजार में। ये शिक्षा व्यवस्था थोड़ी ना सीरियसली, ये बाजार है, प्राइवेट स्कूलों का बाजार है, खूब पैसा कमाने वाले प्राइवेट स्कूलों का बाजार है
अनिल जी। हम
शिक्षा देने वाली दुकानें, ये दुकानें शिक्षा नहीं देती।
जिस बाजार की आप बात कर रहे हैं अनिल सतगोपाल जी, उस बाजार की जो व्यवस्था जो आपने समझी है वो हम भी समझने की कोशिश करेंगे, आगे बात बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ और श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करते हैं, बहुत जरूरी है श्रोताओं से बात करना, ये श्रोताओं का कार्यक्रम है। जी
जी नमस्कार।
जी नमस्ते
जी। गांव कितनौरिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर राजस्थान से पठानखान गज्जू बोल रहा हूँ।
गज्जू साहब रखें अपनी बात।
मेरी राय ये है कि सरकार इन पर निगाह क्यों नहीं रखती है, ये परीक्षा जो बनते हैं पेपर।
लगता है इनका फोन भी संपर्क टूट गया है। अगले श्रोता से जोड़िए स्टूडियो मैनेजर तिलक राज भाटिया, अगले श्रोता से हमारा संपर्क कराएं। जी कौन?
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
मैं ऋत्विक बोल रहा हूँ लोधी रोड से।
ऋत्विक लोधी रोड, मतलब आप दिल्ली से बोल रहे हैं?
हाँ दिल्ली से बोल रहे हैं
जी। आपने भी अभी एग्जाम दिया था दसवीं या बारहवीं का?
हाँ मैं क्लास टेंथ में हूँ, मैंने अभी मैथ्स का एग्जाम दिया था तो इन्होंने अभी
जी।
हेलो
जी जी कहिए। हाँ, कहिए।
तो इन्होंने भी रीटेस्ट करा दिया है तो बस क्या मतलब पेपर लीक हुए हैं और इन्होंने रीटेस्ट करा दिया, मतलब सब बच्चों को पेपर तो मिले नहीं थे। अब जिनको नहीं मिले थे वो तो अपना बेस्ट दे के आए थे, अब उन्होंने सोचा भाई पेपर खत्म हो गए हैं तो अपना बेस्ट देंगे और मस्ती करेंगे। अभी लीक हो गए हैं, और उसके बाद भी अभी मेरा दोस्त मिला था, अभी फ्रेंच का एग्जाम बचा था, तो वो कह रहे हैं कि भाई 3000 में पेपर मिल रहा है फ्रेंच का, बता दूं तेरे को। अब ये एक्शन लिया है बताओ सीबीएसई ने। अब इनको तो बस बोलना होता है कि हाँ भाई ऐसे पेपर है और तुम ऐसे ऐसे आ जाना वेन्यू पे, और कह रहे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन कैसे ना लें यार, मैथ्स का पेपर है, मजाक की बात थोड़ी ना है।
ऋतिक, पुलिस का भी ये कहना है कि वो इस मामले की जड़ तक जाने की कोशिश कर रही है, और हमें आपको ये सबको उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्द कुछ गिरफ्तारियां होंगी और शायद पता चले कि इसके पीछे किसका हाथ था। बहरहाल और श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करते हैं, उसके बाद हम एक बार फिर हमारे
नमस्ते
जी। नमस्ते,
सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ सर।
जी बसंती लाल जी, बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात।
मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये सी बातें होती है तो कानून को कुछ कड़ा प्रावधान करना चाहिए और गिरफ्तारियां जल्दी से जल्दी होना चाहिए।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अब चोर पकड़ में आए तब तो पुलिस पकड़े, तो अब जब जैसे पकड़ में आएगा हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हैं, खबर आपको मिलेगी, बराबर मिलेगी जब जैसे ही इस पर आगे कुछ घटनाक्रम आएगा। और भी रांची में कुछ मामला सामने आया था, वहाँ पर कुछ कहते हैं कि धर पकड़ हुई है, वो जानकारी हम आपके लिए अब से कुछ देर बाद लेकर आएंगे। अनिल सतगोपाल जी, मैं इसी जो आपको कार्यक्रम में चर्चा में दोबारा शामिल कर रहा हूँ, जैसा कि अभी आप कह रहे थे एक बाज़ार बन गया है ये शिक्षा व्यवस्था, और उस बाज़ार में से ये पेपर लीक होने का फॉर्मूला निकल के आता है, ये क्या कहना चाह रहे थे आप, जरा समझाएं।
देखिए शिक्षा का मकसद केवल नौकरियां दिलवाना नहीं है, यहाँ से बात शुरू करते हैं, केवल नौकरी दिलवाना नहीं, शिक्षा का मकसद लोगों को ज्ञान देना है, उनकी उनमें विवेक पैदा करना है, गलत और सही के बीच में विवेक पैदा करना है, उनमें सृजनशीलता लाना, उनको आगे के भविष्य के लिए नए सपनों में शामिल करना, उनके सपनों को साकार रूप देना, आदि आदि जो शिक्षा का उद्देश्य सब हमेशा रहा है। अब तो यह हो गया कि नंबर कितने आते हैं, सब नंबर पे परसेंटाइल पे आ गया है, आपके 99% है तो भी काफी नहीं, 99.5 आने चाहिए। जब आपने इस तरीके का माहौल खड़ा कर दिया तो हर स्टूडेंट की इच्छा है, वो तो केजी से ट्यूशन में आ जाता है ना, केजी से ट्यूशन शुरू जाती है, किंडरगार्टन से, माँ बाप भी चाहते हैं किंडरगार्टन में ट्यूशन आ जाए, तब से एक पैरेलल व्यवस्था समानांतर व्यवस्था खड़ी है कोचिंग की, जो बननी चाहती है, कोचिंग का मतलब पैसा, खूब पैसा, माँ बाप का भी पैसा, बच्चों का पैसा, बाजार का पैसा
जी, इसका
तो
मतलब
कोचिंग वाले भी चाहते हैं कि चोर दरवाजे से घुसे और सीबीएसई के पेपर लीक करवाए,
अनिल सतगोपाल जी आप जो कह रहे हैं वो बात मोटी मोटी मेरे ये समझ में आई है कि जो नंबरों की दौड़ और एक तरह की होड़ शुरू हो गई है, जो पहले भी थी लेकिन अब शायद और तेज हो गई है, उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। चर्चा का दायरा अनिल जी और श्रोताओं को साथ में लेते हुए थोड़ा और बढ़ाते हैं हम चर्चा का दायरा। सीबीएसई का पर्चा लीक होने से पहले एक और एग्ज़ाम का पर्चा लीक हुआ था, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं एसएससी का पर्चा लीक होने के बाद एसएससी की कार्य प्रणाली में सुधार की मांग के साथ राजधानी दिल्ली में युवाओं ने आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। आइए सुनते हैं उसी प्रदर्शन से निकली कुछ आवाजें।
एक रोज जो सपना सजाया था हमने, चलो उस सपने को आज साकार करते हैं, तुमको शक है मेरे हर सबूत पर, और एक हम है तुम्हारी सीबीआई पे भी विश्वास करते हैं।
हमारी दो डिमांड थी पहले से ही, पहली तो ये थी कि एक तो जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, गत वर्ष में जितने भी एग्जाम चल रहे हैं, इनकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच हो अंडर सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी मांग ये थी कि जितने भी गत वर्ष में एग्जाम चल रहे हैं, कंटिन्यू है या आने वाले एग्जाम है, वो तब तक रोक दिए जाए जब तक जाँच नहीं हो जाती। ये चीज
एसएससी के खिलाफ दिल्ली में आज हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में छात्र उत्तर प्रदेश से आए थे। हो सकता है कि ये जो आवाज़ें आप तक पहुंची उनमें से कुछ छात्र उत्तर प्रदेश के हों। उन्हीं छात्रों ने हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र को बताया है कि प्रदर्शन के बाद कुछ छात्रों का अता पता नहीं है। समीर आत्मज मिश्र को टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे, उससे पहले एक बार फिर हम कुछ श्रोताओं को शामिल करते हैं, उनके फोन कॉल शामिल करते हैं। इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ गए हैं?
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
हाँ वेद प्रकाश बोल रहा है, रामगढ़ झारखंड से।
रामगढ़ झारखंड से वेद प्रकाश जी, रखें अपनी बात।
जी ऐसा है कि आप व्यापम घोटाला से लेकर के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हुए हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सब एग्जाम में इस तरह का पेपर लीक का मामला आया है, और जब से ये सरकार आई है तब से ये जो पेपर लीक का मामला है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। पहले तो सीबीएसई बोर्ड वगैरह में इस तरह का मामला नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा है।
मैं यहाँ पर इन श्रोता को रोकता हूँ और अनिल सतगोपाल जी आपको चर्चा में दोबारा शामिल करता हूँ। जैसा कि ये श्रोता कह रहे थे कि इस सरकार के आने के बाद लीक होने के पर्चे लीक होने के मामले ज्यादा आ रहे हैं, आप तो कई वर्षों से इस पर नजर रख रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था पर तमाम बारीकियों को समझते हैं, क्या आपको लगता है कि ये पेपर लीक होने के मामले हाल के वर्षों में बढ़े हैं, या पेपर पहले भी लीक होते थे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि लीक पहले भी होते थे लेकिन तब इतना मामला तेजी से सामने नहीं आता था?
नहीं, देखिए ऐसा है कि जब शिक्षा का बाजारीकरण शुरू नहीं हुआ था, जो हम जब स्कूल पढ़ते थे 50 के दशक में, 60 के दशक में भी, 70 के दशक में भी, तब इस ढंग से लीक नहीं होते थे। गड़बड़ी होती, नकलें होती थी, पर लीक नहीं होते थे क्योंकि उसमें चोर दरवाजे नहीं थे। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। ना ही इस प्रकार की होड़ थी कि 99% मार्क्स लाने हैं, क्योंकि हमेशा ऊपर जगह खाली होती थी पढ़ाई लिखाई की विश्वविद्यालयों में, और विश्वविद्यालय की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा महंगी नहीं थी। अब तो निजीकरण से बड़ी महंगी हो गई है, इसलिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, होड़ बढ़ गई है, ये सब चीजें इसमें योगदान दे रही है। और बेरोजगारी, इसको मत भूलिए, ये बेरोजगारी जो आज है ये नहीं थी। अब तो तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके गति बढ़ गई है बेरोजगारी बढ़ने की, और शिक्षित बेरोजगारी गैर शिक्षित बेरोजगारी से ज्यादा खौफनाक हो गई है
जी,
क्योंकि जो गैर शिक्षित है वो कोई रास्ता खोज लेता है जिंदा रहने का, अस्तित्व बनाने का।
जी अनिल सतगोपाल जी, तो फेसबुक की कुछ टिप्पणियां जी, फेसबुक की कुछ टिप्पणियां आपकी बात से मिलती जुलती शामिल करता चलूं कार्यक्रम में। जीवन सिंह हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि शिक्षा का महान उद्देश्य ज्ञान और कर्म है। वहीं रघुवीर भगत लिखते हैं फेसबुक के पन्ने पर, बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर, कि शिक्षा प्रणाली भ्रष्ट लोगों के हाथ में चली गई है। अविनाश कुमार सिंह लिखते हैं, हमारे खून में व्यापार है और ये बात किसने बोली थी, व्यापारी हमेशा अपना हित देखता है। ये कुछ टिप्पणियाँ थीं बीबीसी हिंदी के फेसबुक पेज से। कार्यक्रम में रांची से सहयोगी हमारे रवि प्रकाश को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में सीबीएसई और एसएससी के पर्चे लीक होने के मामले में पुलिस ने आज कुछ दावे किए हैं। इस खबर पर क्या जानकारी दे रहे हैं रवि प्रकाश आप?
दरअसल सर, दसवीं की जो गणित की परीक्षा है उसका पेपर लीक हुआ है झारखंड में। चतरा के जो एसपी हैं अखिलेश वारिया, उन्होंने मुझे बताया कि 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 9 तो छात्र हैं जो दसवीं की के परीक्षार्थी थे और 3 कोचिंग संचालक हैं। एक कोचिंग संचालक जो सतीश पांडे हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक हैं, उनका कोचिंग संस्थान था, उन्होंने इस पर्चे को लीक करवाया। जो पुलिस का कहना है वो यह है कि पर्चा लीक हुआ है पटना से, तो पटना के श्रीकृष्णनगर मोहल्ले से भी 2 छात्रों को अरेस्ट किया गया है। कुल मिलाकर 12 गिरफ्तारियां हैं, 6 लोग जेल भेज दिए गए हैं, उनमें 3 लोग जेल भेजे गए हैं, बाकी के 3 लोगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है, और 6 जो दूसरे छात्र हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह कह रही है कि गणित का पेपर तो एक दिन पहले ही आउट हो गया, उसका पर्चा लीक हो गया, लेकिन जो एसएससी का और साइंस का पेपर था वो एग्जामिनेशन के दौरान ही वो लीक हुआ। मतलब कोई छात्र लेकर गया मोबाइल और उससे स्क्रीनशॉट बनाया पर्चे का और उसको बाहर भेज दिया, और कोचिंग के जो संचालक हैं वो इसके आंसर्स को बनाने में जुट गए और फिर उसको वायरल किया गया। चतरा के एसपी ये कह रहे हैं कि क्योंकि यह जांच अभी जारी है तो और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जब मैंने पूछा कि क्या इसका कोई लिंक है दिल्ली और हरियाणा से, क्योंकि सीबीएसई ऐसा कह रहा है दिल्ली में, तो उनका कहना था कि हमें कोई लिंक नहीं मिला है हरियाणा या दिल्ली का, हमें सिर्फ पटना का लिंक मिला है, इसलिए हमने पटना से अरेस्टिंग की है। अगर बाद की जांच में यह पता चलेगा कि इनका कोई कनेक्शन दिल्ली से था या हरियाणा के छात्रों से था, तो हम उसकी भी जांच करेंगे। जी,
रांची से रवि प्रकाश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अनिल सतगोपाल जी, एसएससी का पर्चा लीक होना और सीबीएसई का पर्चा लीक होना, एक नंबर की परीक्षा थी, दूसरी नौकरी की परीक्षा थी, क्या इन दोनों में कुछ फर्क पाते हैं पर्चा लीक होने के मामले में आप?
देखिए, मैं एक बार फिर समझाना चाहता हूँ कि एक तो दबाव पूरे व्यवस्था के ऊपर इस फजूल की होड़ का, नंबरों की होड़ का, और उसके लिए बाजारीकरण और निजीकरण, और दूसरा दबाव बेरोजगारी का, इसको मत आप कम करके आंकिए। इस बेरोजगारी की व्यवस्था ने अब युवाओं को बेचैन कर दिया है, उनको मजबूर किया है कि वो इस तरह के रास्ते अपनाएं, इस तरह के तरीके अपनाएं ज्यादा नंबर लेने के लिए, और जो शिक्षा जो सीबीएसई का सिस्टम पूरा प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ है उनके द्वारा उनके लिए चलाया जा रहा है अब तो वो प्राइवेट स्कूल वाले तो भी मजबूर कर रहे हैं कि उनको भी अपनी दुकान जिंदा रखनी है, वो भी तैयार है लीक करवाने के लिए, सब तैयार है लीक करवाने के लिए। ये तो पूरा बेरोजगारी और प्रतिस्पर्धा इन दोनों ने मिलकर सारे चोर दरवाजे खोल दिए जो कोचिंग क्लास के हाथ में चले गए, इसलिए वो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, ये तो मालूम ही था कोचिंग क्लास वाले का।
अनिल सतगोपाल जी कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए, अनिल सतगोपाल जी कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। कुछ और श्रोता हमसे इस समय जुड़ रहे हैं, कौन हमसे कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं अब इस समय? जी नहीं, आवाज ठीक से आ नहीं रही है। और दूसरे श्रोता बताइए कौन है इस समय? जी
हेलो,
जी कौन बोल रहे हैं?
लक्षिता, लक्षिता कांडपाल।
लक्षिता कांडपाल बहुत स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रही हैं?
मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ, न्यू पालम विहार।
आप भी उन बच्चों में शामिल हैं जिन्होंने 10th या 12th के एग्जाम्स दिए थे?
हाँ जी, मैंने अपना 12th का एग्जाम दिया है अभी, इकोनॉमिक्स का।
जाहिर सी बात है आपकी कई योजनाओं पे पानी फिर गया होगा।
बहुत।
तो बताएं सुनने वालों को क्या क्या कैसा क्या अब आपकी दिनचर्या कैसी बदल गई है, क्या फील कर रही हैं? एक नई नई सिरे से परीक्षा की तैयारी, एक नई जंग।
एक्चुअली ये लाइक हमारे लिए तो बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है, क्योंकि साल भर हमने पढ़ाई की है उस पेपर के लिए। जो एक बोर्ड का जो पेपर होता है वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए, एंड उसके एंग्जाइटी स्ट्रेस वो सब एक्साइटमेंट जो होती है 2-3 महीने पहले से शुरू जाती है जो हम एक्चुअली पेपर देने जाते हैं। और उसके बाद ये पता चलता है कि पेपर दे के आओ, सब इतनी मेहनत की, उसके बाद आपको पेपर दोबारा देना है, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ऑब्वियसली सिस्टम से भी डिसअपॉइंटमेंट है, उन लोगों से किससे तो है ही जिन्होंने ये सब किया है, बट फिर अब वही स्ट्रेस एंग्जाइटी वही सारा प्रेशर दोबारा अपने ऊपर लो, फिर वापस पेपर देके जाओ, एंड व्हाट इफ कि अगर वो वाला पेपर भी लीक हो जाए तो हम पेपर ही थोड़ी देते रहेंगे बस।
चलिए पेपर तो नहीं देते रहेंगे, लेकिन जब तक पढ़ाई लिखाई तब तक पेपर तो देने ही होंगे। बहरहाल इस समय खुशी से दीजिए चाहे ना खुशी से दीजिए, लेकिन ये कहने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी अब एग्जाम से बचा तो नहीं जा सकता। अगले कॉलर को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। तुषार भाई आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है, माफ़ी चाहते हैं, हम कार्यक्रम में ऐसी आवाज़ को आपसे बात नहीं हो पाएगी, बहुत खेद है। तिलक राज भाटिया स्टूडियो मैनेजर इशारा कर रहे हैं कि शायद कुछ और श्रोता लाइन पर हैं इस समय। जी नहीं, लगता है संपर्क टूट गया है। एक बार फिर अनिल सतगोपाल जी के पास चलते हैं, समय बहुत कम बचा है। अनिल जी, तमाम बातें जो अभी तक हुई हैं समझ में आई हमें, अब आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, पेपर लीक ना हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम के हों या सीबीएसई के हों या किसी प्रतियोगी परीक्षा के हों, ये ना हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए जो आपको लगता है कि अभी तक सही मायने में नहीं किया गया, जो अब करना चाहिए?
देखिए, जितनी बात मैंने कही उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक आप निजीकरण और बाजारीकरण को सरकार से सरकार की नीति उसको आगे बढ़ाती रहेगी, तब तक ये गिरफ्तारियां नहीं बंद करने वाली। कितनी गिरफ्तारियां कर लीजिए, नया बिजनेस खुलेगा, नए लोग आएंगे चोरी करने के लिए। तो ये जो व्यवस्था मूलक परिवर्तन की मांग है, जो हम लोग बरसों से इस बात पे लगे हुए हैं कि देश भर में सरकार को बेहतरीन क्वालिटी की समता मूलक बराबरी के आधार पर एक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा केजी से पीजी तक स्थापित करनी चाहिए, ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। और जिस बात की मांग कर रहे हैं समता मूलक शिक्षा व्यवस्था की, ये एकमात्र वो शिक्षा व्यवस्था है जो भारत के संविधान के अनुरूप है, बाकी सब गैर संवैधानिक है। जो इस समय बाजारीकरण पे खड़ी हुई, गैर बराबरी पे चलने वाली, भेदभाव पैदा करने वाली, जाति व्यवस्था को मजबूत करने वाली, ये जो व्यवस्थाएं स्थापित हो रही है इस समय, ये हमेशा चोर दरवाजा खोल के रखेंगी और पेपर लीक होते रहेंगे। बदलना है तो उस रास्ते पे आइए जो संविधान का रास्ता है, भारत के संविधान का। प्राइवेटाइजेशन खत्म कीजिए, कमर्शलाइजेशन खत्म कीजिए, और सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी संविधान के तहत ले कि सारे देश के बच्चों को केजी से पीजी तक बेहतरीन शिक्षा देगी, जो सब विकसित देशों की कहानी है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनिल सतगोपाल जी, घड़ी की सुइयां मुझे इजाजत नहीं दे रही है कि मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं, चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आप शामिल हुए, अपनी बात रखी, और तमाम श्रोताओं से माफ़ी मांगेंगे जो चाहते थे चर्चा में शामिल होना लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाए। अगले शनिवार फिर एक ज्वलंत विषय के साथ हम इंडिया बोल लेकर हाजिर होंगे। तिलक राज भाटिया हमें आप तक पहुँचा रहे थे और अनंत प्रकाश फेसबुक के जरिए हमें आपसे पहुंचा रहे थे। नमस्कार भारत, सुबह 6:30 बजे होगी फिर मुलाकात।